This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
क्या आप जानते हैं ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जहां माता सती के किसी भी अंग का निपात नहीं हुआ, फिर भी वो 51 शक्तिपीठों में सबसे सिद्ध शक्तिपीठ कहलाता है, जहां की महिमा कहते कहते वेद पुराण और देवता भी नहीं थकते। वो स्थान जो इस सृष्टि का आधार केंद्र बिंदु है, वो स्थान जो कल भी था, आज भी है और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी रहेगा, क्योंकि यही से दोबारा सृष्टि का प्रारंभ होगा। वो स्थान जहां माँ योग माया आदि शक्ति देवी सती अपने पूर्ण रूप में सदैव निवास करती हैं। एक ऐसा अद्भुत सिद्ध स्थान जिसकी महिमा बस कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ और वो गाथा कभी खत्म ही ना हो। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। 51 शक्तिपीठ विद निष्ठा के अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। 51 शक्तिपीठों की ये यात्रा आप सबके साथ बहुत ही सुंदर रही। अंतिम एपिसोड में हम चल रहे हैं माता के अंतिम धाम, क्योंकि इस स्थान का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। वो अनंता यहाँ अनंत तक के अपने वास में है। हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण और वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस एपिसोड में हम चल रहे हैं माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत पर, जहां गंगा नदी के पावन तट पर स्थित है कमल नयन माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को अंतिम शक्तिपीठ भी कहते हैं, क्योंकि माँ सृष्टि के कल्याण हेतु यहाँ सदैव के लिए विराजमान हो गई थी और विभिन्न युगों में विभिन्न रूप लेकर वो सृष्टि की रक्षा करती आई है। यहाँ की शक्ति है माँ महामाया विंध्यवासिनी और चारों दिशाओं में चार भैरव इस स्थान की रक्षा करते हैं। पूर्व में आनंद भैरव, पश्चिम में सिद्धनाथ भैरव, उत्तर में कपाल भैरव और दक्षिण में रुरु भैरव यहाँ वास करते हैं। कहते हैं कि यहाँ अष्ट भैरव और 52 भैरव भी यहाँ सदैव वास करते हैं, क्योंकि ये अंतिम शक्तिपीठ है। विंध्यवासिनी धाम के द्वारपाल हनुमान बाबा और भैरवनाथ हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस स्थान की महिमा कहने का प्रयास करना गागर में सागर भरने जैसा है, किंतु अपनी छोटी बुद्धि से और माँ आदि शक्ति की प्रेरणा से मैं इसको जितना समझ पाई कहने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि पुण्य कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करने चाहिए। यदि कोई कमी रह जाए तो माँ महामाया मुझे क्षमा करें। श्री दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा के प्रथम श्लोक में ही देवी महामाया की आराधना करते हुए कहा गया है कि ओम ज्ञानानामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेच जन्यतो स्वस्ति स्मृताम मतिमिव शुभाम ददासि। ओम दारिद्र यदु खवय हारिणी का तुदन्या सर्वोपकारणाय सदार्धचित्ता। वो भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका हृदय सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मेधा मुनि राजा सूरत को बताते हैं कि देवी महामाया ही इस जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही पर अविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्य चैव नगर श्रेष्ठे तव स्थानम ही शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। विंध्य वासिनी के दो अर्थ हैं, एक विंध्य पर्वत पर वास करने वाली देवी और दूसरा बिंदु निवासिनी अर्थात शून्य में निवास करने वाली देवी। शून्य अर्थात जो आदि और अंत का केंद्र है, जहां से सब प्रारंभ है और जहां पर सबका अंत है। विंध्य क्षेत्र का वर्णन हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में आया है, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, महाभारत, वामन पुराण, हरिवंश पुराण, राजतरंगिणी, बृहत कथा, कादंबरी कथा और कई तंत्र ग्रंथों में इस स्थान की महिमा का गुणगान किया गया है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी को विंध्य वासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। इस स्थान का इतिहास बहुत पुराना है। विभिन्न युगों में यहाँ माता ने विभिन्न प्रकार से अपनी माया रची और भक्तों को सुख दिया। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के दशम स्कंद में कथा आती है, सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जब सबसे पहले अपने मन से स्वयं भू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयं भू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर इसी स्थान पर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी इसी विंध्याचल पर्वत पर स्थित हो गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। फिर सतयुग में देवी सती के प्राण त्याग के बाद महादेव को शोक से बाहर निकालने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने महामाया की स्तुति की और महादेव का कष्ट हरने के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने भोलेनाथ को दर्शन देकर उनका शोक हर लिया और बताया कि वो जल्दी ही हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगी। उसके बाद माता आदिशक्ति पुनः विंध्याचल पर चली आईं, क्योंकि ये ही उनका निज निवास स्थान है। फिर त्रेता युग में भगवान राम वापस अयोध्या जाते हुए माँ सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ आए। रावण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए उन्होंने यहाँ माता के शक्तिपीठ में यज्ञ किया। यहाँ गंगा नदी के तट पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की और अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। ये शिवलिंग आज भी गंगा नदी के भीतर स्थित है। जब पानी कम होता है तब शिवलिंग बाहर आ जाता है, अन्यथा गंगा जल में ही मग्न रहता है। ये भी एक प्रमाण है कि यहाँ गंगा मैया पर्वत के ऊपर से बहती है। यहीं पर ही भगवान राम ने सीता माता के लिए सीता कुंड का निर्माण किया था। वो कुंड आज भी यहाँ स्थित है। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के श्लोक 40 में देवी माँ स्तुति करने पर देवताओं से कहती है, देवताओं, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल पर जाकर रहूंगी और इन महादैत्यों का संहार करूंगी। फिर द्वापर युग की कहानी तो घर घर में प्रचलित है। हम सब जानते हैं कि माता आद्य शक्ति को भगवान विष्णु अपनी बहन मानते हैं। उन्हीं भाई बहन के प्रेम की एक कहानी ये भी है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी और वासुदेव को चिंता सताने लगी कि क्या उनकी कोई संतान कभी जन्म ले पाएगी, क्या वो जीवन भर ऐसे ही कारावास में जीवन बिता देंगे। तब गर्ग ऋषि उनसे मिलने कारावास में आते हैं और वो अपनी सारी व्यथा अपने गुरु को कह सुनाते हैं। तब गर्ग ऋषि विंध्याचल पर्वत पर जाकर लक्ष चंडी यज्ञ करते हैं और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि अब वो ही रक्षा करें। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही उनकी बहन योगमाया का जन्म हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण को माँ यशोदा के पास छोड़ आए और महामाया को कारावास में देवकी के पास ले आए। जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुना तब वो कारागार पहुंच गया और उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करके कंस से कहा, कंस तेरी मृत्यु है अटल, मैं तो चली विंध्याचल, तुझे मारने वाला तेरा काल जन्म ले चुका है। ये वज की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल चली गई। फिर उन्होंने यहाँ शुंब और निशुंब का वध किया। यहीं पर काली खो में उन्होंने रक्त बीज का भी वध किया। तब से माँ यहाँ नित्य निवास करती हैं। विंध्याचल ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ माँ विंध्यवासिनी अपनी 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान है, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र कहा जाता है। यहाँ जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में ही त्रिकोण का निर्माण करती हैं। माँ विंध्यवासिनी यहाँ यंत्र पर विराजमान है। ये पृथ्वी पर अकेला ऐसा स्थान है जहाँ माँ गंगा पर्वत के ऊपर बहती है। विंध्याचल से गंगा माँ विंध्यवासिनी का रज लेकर शिव की नगरी काशी की ओर प्रस्थान करती है। फिर इसी पावन जल से भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्ण अनुजा वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से 286 किलोमीटर और लगभग 6 घंटे की दूरी पर और प्रयागराज से 83 किलोमीटर लगभग 1 घंटा 45 मिनट की दूरी पर स्थित है माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ। मान्यता है कि ये विंध्याचल क्षेत्र त्रिकोण यंत्र पर स्थापित है। इस त्रिकोण के तीनों कोनों पर माँ के 3 सिद्धपीठ स्थापित हैं, जिनमें से विंध्यवासिनी माँ का मंदिर सिद्धपीठ के साथ शक्तिपीठ भी है। ये तीनों सिद्धपीठ देवी की तीनों शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। त्रिकोण पथ पर पहली देवी है माँ विंध्यवासिनी, जो माँ महालक्ष्मी का स्वरूप है। माँ की वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना की जाती है। आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी की मार्कंडेय पुराण में देवी की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि यम यम कामम चिंतयन्ते तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भक्त जैसे जैसे माता की आराधना करता है, वैसे वैसे उसकी मनोकामना सिद्ध होने लगती है। माँ विंध्यवासिनी महामाया महालक्ष्मी है। वहीं त्रिकोण पथ पर दूसरी देवी है माँ महाकाली, जो कि काली खो सिद्धपीठ में विराजमान है। इन्हें महाकाली भी कहा जाता है। माता का ये स्वरूप बहुत ही विकराल है। यहाँ वो रुद्र रूपा है। यहाँ माँ काली की पिंडी रूपी प्रतिमा ही स्थापित है, किंतु उसका मुख ऊपर की ओर खुला हुआ है, जिससे माँ भोग स्वीकार करती है। भक्त अपने हाथों से माँ को भोग अर्पित करते हैं और माँ उस भोग को स्वीकार करती है। माता के ये दिव्य दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। कहते हैं कि रक्त बीज का वध इसी स्थान पर किया गया था, इसीलिए उनका मुख खुला हुआ और विकराल है। ऐसा माना जाता है कि महाकाली के इस स्वरूप का दर्शन करने से शत्रु पराजित होते हैं। त्रिकोण यंत्र पथ में देवी का तीसरा स्वरूप है माँ अष्टभुजी। यंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए अष्टभुजी देवी विराजमान है। यहाँ माता अष्टभुजी का मंदिर स्थापित है। ये माँ का महासरस्वती स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण की बहन है। देखने पर माता के इस विग्रह का मुख एक छोटे बच्चे जैसा नजर आता है। अपनी अष्टभुजाओं से माँ सब कामनाओं को साधती हुई संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की 8 भुजाओं से रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ अष्टदल कमल आच्छादित है, जिसके ऊपर 16 दल है, उसके बाद 24 दल हैं, बीच में एक बिंदु है जिसमें ब्रह्म रूप से महादेवी अष्टभुजी निवास करती हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त विंध्याचल दर्शन करने आए, अगर वो इस त्रिकोण की परिक्रमा करे और तीनों माताओं का आशीर्वाद ले, तो उसका जीवन ही बदल जाता है। विंध्याचल पर्वत की कहानी भी बहुत रहस्यमयी और रोचक है। कहते हैं कि प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पहले हिमालय की तरह ही पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी। गंगा नदी भी पर्वत के ऊपर से बहती थी। किंतु उसे अपने बड़े होने और माता के सदा अपने साथ होने का अहंकार हो गया। तब माता ने उसको अपने पैरों से दबा दिया और उसका अहंकार समाप्त किया। उसने माँ से क्षमा मांगी और सदा उसके साथ रहने का वरदान मांगा। इसके कई प्रमाण इस स्थान को देखकर मिलते हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आइए अब माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं। पार्किंग के बाद आपको दोनों तरफ रंग बिरंगी दुकानों से गुजरते हुए कुछ 100 मीटर तक चलना होगा। इन दुकानों पर प्रसाद, माँ को समर्पित करने वाला सामान जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान आदि और साथ ही स्मृति चिन्ह भी मिलते हैं। मंदिर परिसर छोटा होते हुए भी इसमें कई सारे मंदिर हैं। विंध्यवासिनी के मुख्य मंदिर के दर्शनों के लिए आपको एक बहुत लंबी कतार में खड़ा होना पड़ सकता है। अब यहाँ भारी भीड़ होती है, लेकिन मंदिर के अधिकारी इसे बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं और कतार धीरे धीरे चलती रहती है। मुख्य मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी समय एक पहाड़ी गुफा रही होगी और ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा। गुफा से होते हुए भक्त माँ के गर्भगृह में पहुँचते हैं। गर्भगृह में माता का स्थान चांदी से बनाया गया है। माँ का ये विग्रह स्वयंभू है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। माँ के विग्रह पर सोने का छत्र चढ़ा हुआ है। माँ की आंखें इतनी सुंदर हैं कि भक्त उन कमल नयनों में ही खो जाते हैं, उसके आगे कुछ और देख ही नहीं पाते। माँ विंध्यवासिनी देवी के विग्रह को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। माँ ने बहुत सुंदर सोने की नथ पहनी है। माँ का मुकुट और हार उन पर खुद को पाकर बहुत इठला रहे हैं और खूब चमक रहे हैं। काले पत्थर के चेहरे पर केवल चमकती हुई सुनहरी सोने की बड़ी बड़ी आंखें ही दिखाई देती हैं। माँ की आंखें ऐसी लगती हैं जैसे माँ साक्षात तुम्हें देख रही हैं। माँ के विग्रह के आगे उनका वाहन सिंह बैठा है। बहुत भीड़ होने के कारण शायद अब शांति से माँ के दर्शन आपको प्राप्त ना हो, पर माँ इतने में ही आपको आपकी हर इच्छा पूर्ति का वरदान दे देती हैं। आपको बाहर धकेले जाने से पहले माँ को आंखों में भरकर देखने के लिए आपको बस कुछ ही क्षण मिलते हैं। इस मंदिर परिसर में भी देवी की 3 अभिव्यक्तियों का एक और त्रिकोण स्थापित है। विंध्यवासिनी के एक ओर महाकाली और दूसरी ओर महासरस्वती का मंदिर है। जिस मंदिर में महासरस्वती है वह शिव मूर्ति के साथ एक सुंदर दोहरा शिवलिंग भी है। दीवारों पर हनुमान, गणेश और भैरव की मूर्तियां हैं जो कि बहुत पुरानी लगती हैं। यहाँ कुछ और भी पुरानी पत्थर की मूर्तियां हैं जो ये संकेत देती हैं कि प्राचीन मंदिर कैसा रहा होगा। इस मंदिर की संरचना बहुत पुरानी है। यहाँ आपको खम्भे और कोष्ठकों में संगीत बजाते गंधर्व दिखाई देते हैं। ये मंदिर चमकीले रंगों से रंगा हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखता है। महासरस्वती मंदिर के पीछे एक विशाल यज्ञशाला है जहाँ मनोकामना यज्ञ होता है। जैसे गर्ग ऋषि ने यहाँ आकर यज्ञ किया था, कोई भी यज्ञ में शामिल हो सकता है और यज्ञ करा सकता है। मंदिर से एक पतली सी गली नीचे गंगा नदी तक जाती है। जब आप मंदिर में होते हैं तो आपको इसका एहसास नहीं होता कि आप गंगा नदी के बिल्कुल पास हैं, क्योंकि मंदिर काफी ऊंचाई पर है। कई लोग गंगा में स्नान करने के बाद ही माँ के दर्शन करते हैं। नवरात्रि यहाँ का मुख्य त्योहार है। वैसे तो हर दिन ही यहाँ त्योहार है, क्योंकि यहाँ माँ साक्षात विराजती हैं। आइए आप जल्दी से जानते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज है। सड़क व ट्रेन से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ रुकने की भी हर स्तर की व्यवस्था उपलब्ध है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि अगले एपिसोड में हम चलेंगे, क्योंकि आज माता के पूर्ण शक्तिपीठ विंध्यवासिनी के साथ हम अपनी 51 शक्तिपीठ की यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य अपने विस्तृत इतिहास को समझना है, ताकि जब भी कोई इसे माइथोलॉजी कहे तो हम ये प्रमाण दे सके ये हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है। और इसके प्रमाण हमारे देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी आज भी स्थापित हैं। साथ ही अपनी संस्कृति की विशालता और इसमें रची बसी आध्यात्मिकता को समझना और जन जन तक पहुंचाना है। तो जब भी मन घबराए और कुछ पाने की चाह हो, या मन सिर्फ शांति चाहता हो, तो अपने आसपास के किसी भी शक्तिपीठ पर माँ के पास चले जाना। माँ वहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए सतयुग से विराजमान है और सदैव विराजमान रहेगी। जय माता दी।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।